हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर ने जोया, रिया और अकरम को अस्पताल पहुंचाया था। अरहम इमरजेंसी रूम के बाहर अपना चेहरा ढककर खड़ा था। वो वहां इतने सारे सुरक्षाकर्मियों को देखकर हैरान था। उसे समझ आ गया था कि जोया को अस्पताल ले आने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं था। धीरे धीरे जोया को होश आ रहा था। होश में आते ही जोया और अबीर में नोकझोंक होने लगी। इस नोकझोंक के बीच वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, इतने करीब कि उनकी सांसें आपस में टकराने लगी थीं। अबीर को इतना करीब पाकर जोया ने बोलना बंद कर दिया और उसकी आंखें ऑटोमैटिक बंद हो गईं। उसे आंखें बंद करते देख अबीर मुस्कुराने लगा। वो अपने होंठ उसके होठों पर रखने ही वाला था कि तभी डॉक्टरों की एक टीम आ पहुंची। जोया झेंप गई और जल्दी से अबीर से दूर हो गई। अबीर डॉक्टरों को घूर कर देखने लगा। अबीर को इस तरह घूरता देख सभी डॉक्टरों ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, लेकिन उन सभी में एक ऐसी गर्दन थी जो झुकी हुई नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि अरहम था, जो अस्पताल के ही एक स्टाफ का कोट पहनकर वहां आ पहुंचा था। जोया को अबीर के इतना करीब देखकर अरहम के अंदर चलन हो रही थी। वो वहां खड़ा सिर्फ जोया को ही देख रहा था। जोया को महसूस होने लगा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई न कोई मुझे देख रहा है, जोया ने सोचा। यह अकड़ू ही होगा। जोया ने अबीर की ओर देखा, लेकिन अबीर उस वक्त डॉक्टरों से बात करने में व्यस्त था। अगर ये मुझे नहीं देख रहा है तो कौन मुझे देख रहा है? जोया ने एक एक करके सभी डॉक्टरों और स्टाफ को देखना शुरू कर दिया। सभी को देखने के बाद जोया की नज़रें दो आंखों पर रुक गईं। दूसरी ओर अरमान जैसे ही अपनी तरफ से वापस आया, उसने देखा कि वो औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। अरमान चौंक गया क्योंकि उसने उसे खाना टेबल पर रखकर जाने के लिए कहा था। उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज उसे इंतज़ार करते देख अरमान ने पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? उसने कहा, साहब जी, हम हमेशा के लिए अपने गांव जा रहे हैं, पूरे परिवार समेत। सोचा आपको रुककर बता दूं, और ये भी बता दूं कि कल से हम नहीं आ पाएंगे, तो आप अपने खाने पीने का कोई और इंतज़ाम कर लेना। आपको परेशानी ना हो, बस यही बताने के लिए हम रुके थे, उस औरत ने घूंघट में ही जवाब दिया था। लेकिन अचानक गाँव क्यों जा रहे हो तुम लोग, क्या हुआ? अरमान ने पूछा। उसने कहा, साहब जी, गांव में एक जमीन का टुकड़ा हमारे हिस्से में आया है और वहीं सब जान पहचान रिश्तेदार लोग रहते हैं। अब यहां इस वीरान और अलग जगह पर कोई भी नहीं है हमारा जान पहचान वाला, सो हमने यही सोचा है कि वहीं जाकर परिवार के साथ रहेंगे। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, ये रखो, अरमान ने कहा। वो औरत पैसे लेने से मना करने लगी। नहीं साहब जी, इस महीने के पैसे तो आप पहले ही दे चुके हो हमें, और नहीं चाहिए। अरमान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम रखो और जाओ। वो औरत जाने लगी। बार बार उसका ज़मीर उसे कचोट रहा था, क्योंकि अरमान के काफ़ी एहसान उस पर थे। जाने से पहले औरत ने कहा, साहब आप अपना ध्यान रखना, और वो चली गई। अरमान ने एक पल उसकी बातों के बारे में सोचा और फिर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर जो कोई भी जोया को घूर रहा था, जोया ने उसे देख लिया था। जोया ने देखा कि वो जो कोई भी था जोया को ही देख रहा था। जैसे ही जोया ने उसे देखा, दोनों की नज़रें मिली, तो उसने अपनी नज़रें झुका लीं और वहां से जाने लगा। जोया मन ही मन सोच रही थी, ये कौन है, इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही थीं। जोया अभी सोच ही रही थी कि तभी अबीर उसके पास आ गया और बोला, जोया जी, अगर आप खाना खा लेंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो प्लीज़ आप आइए, खाना वहां लगा हुआ है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैडम, अगर आप खाना खा लेंगी तो आप काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी और आपके बच्चे को भी ताकत मिलेगी। ये सुनकर जोया ने हाँ में सर हिला दिया और वो सामने ही टेबल पर रखे खाने के पास जाने के लिए उठी, लेकिन उसे चक्कर आ गए और अबीर ने उसे संभाल लिया। और हम दरवाजे से बाहर जाते जाते पलटा और अबीर के हाथ जोया की कमर पर देखकर वो तप गया और वहां से बाहर निकल गया। तब अबीर ने जोया को सहारा दिया और उसे टेबल की ओर ले जाने लगा। उसने डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा कर दिया और देखते ही देखते पूरा वार्ड खाली हो गया और जोया खाने की टेबल तक आ पहुंची। टेबल पर तरह तरह का खाना देखकर जोया हैरान हो गई। ये सब क्या है, ये इतना सारा खाना किसके लिए है? ऐसी कोई डिश नहीं थी जो वहां मौजूद ना हो। अबीर ने हर वैरायटी का खाना वहां मंगवा लिया था। अबीर जोया की बात सुनकर अपना सिर खुजाने लगा और बोला, मुझे नहीं पता था तुम क्या खाना पसंद करोगी, इसलिए मुझे जो समझ में आया मैंने मंगवा लिया। जोया की बात सुनकर अबीर ने कहा, तुम खाना खाओ जो तुम खाना चाहो, उसके बाद में ये खाना अस्पताल के स्टाफ में भिजवा दूंगा। जोया ने एक छोटी सी प्लेट ली, उसमें थोड़ा सा सलाद, एक रोटी, थोड़े चावल और जूस लिया। वहाँ चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर तरह का खाना था, लेकिन जोया ने केवल सादा सा खाना लिया और खाने लगी। जोया के खाना खाने के बाद अबीर ने अपने कुछ आदमियों को बुलाया और सारा खाना वहाँ से उठवा दिया और जिस प्लेट में जोया ने खाना खाया था उसे वहीं रखवा लिया। जोया ये देखकर हैरान हो गई। जब अबीर थोड़ा खाना उसी प्लेट में निकालकर खाने लगा तो जोया का शौक से बुरा हाल हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी झूठी प्लेट में खाना क्यों खा रहे हैं? तब अबीर ने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, सुनने में आया है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का झूठा खाना खाएं तो उनमें प्यार बढ़ता है। जोया उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। उसने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, आपको क्या एक बार की बात समझ नहीं आती है? मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, समझे आप? इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अक्रम भाई और रिया कहाँ हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि मैं बीमार हूँ? उन्हें मेरे साथ होना चाहिए था, वे खुद तो यहाँ नहीं है, उल्टा इस अकड़ू राठौड़ को यहाँ छोड़ दिया है। जोया की बात सुनकर अबीर को भी गुस्सा आ गया। क्या कहा तुमने, अकड़ू? तुम्हें क्या मैं अकड़ू दिखाई देता हूँ? अबीर राठौड़ नाम है मेरा और तुम कभी मुझे अमीर राठौड़ बुलाती हो और अब ये अकड़ू, व्हाट्स दिस अकड़ू? अबीर ने मुंह बनाते हुए जोया से कहा। अकड़ू को अकड़ू नहीं तो क्या राम सिंह कहूंगी? नाउ हुज़ द ब्लडी राम सिंह? अबीर फिर से गुस्से से बोला। जोया की बातें अबीर के ऊपर से जा रही थीं, वो उसकी एक भी बात नहीं समझ पाया था। देखिए, मेरे पास आपको समझाने का वक्त नहीं है, आप बताइए कहाँ है अक्रम भाई और रिया? कहीं तुमने तो उनके साथ कुछ नहीं किया, बोलो, जवाब दो, जोया ने कहते हुए अबीर का कॉलर पकड़ लिया था। तब अबीर जोया के दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ता हुआ बोला, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें उन दोनों के पास। ऐसा कहकर अबीर ने बिना कुछ सोचे समझे जोया को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की ओर दूसरे वार्ड में ले जाने लगा, जिस वार्ड में अक्रम और लिया थे। जोया अबीर की गोद में मचलने लगी, मुझे नीचे उतारो अकड़ू राठौड़, वरना मैं काट लूंगी तुम्हें। अबीर ने अपनी ही धुन में मगन होकर जवाब दिया, अब तो चाहे काटो, मारो, अकड़ू राठौड़ कहो या वो राम सिंह कहो, जो तुम्हारा मन आए वो करो, लेकिन लेकर तो हम तुम्हें अपनी बाहों में ही जाएंगे। जोया अपना मन महसूस कर रह गई और वो फिर कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं कर पाई। वार्ड के बाहर जोया को अबीर की गोद में देखकर अरहम के सीने पर सांप से लौटने लगे, वो अपनी तेज आंखों से उसे देख रहा था।
वहीं दूसरी ओर रिया को अभी तक होश नहीं आया था और अकरम उसी के पास उसका हाथ थामे बैठा हुआ था। जोया को अबीर के साथ कुशल देखकर उसने कुछ राहत की सांस ली। अबीर ने बड़ी ही सावधानी से जोया को अकरम के पास बिठा दिया और खुद उस वार्ड में पड़े एक सोफे पर बैठ गया। वह एक प्राइवेट वार्ड था जो VIP लोगों के लिए था। उसमें TV, फ्रिज, AC के साथ साथ सोफा भी पड़ा हुआ था। जोया घबराई सी आवाज में अकरम से बोली, भाई रिया को क्या हुआ है और आप कहाँ थे, क्या हुआ था अचानक से? अकरम ने कहा, तुम्हारे बेहोश होने के बाद मेरा BP लो हो गया था, जिसकी वजह से मैं भी बेहोश हो गया था और मुझे लगता है हम दोनों को बेहोश देखकर रिया को शॉक लगा होगा, इसलिए वो भी बेहोश हो गई होगी। तब हम लोगों को अस्पताल कौन लेकर आया? शायद अबीर साहब हम तीनों को यहाँ लेकर आए थे, अकरम ने कहा। जैसे ही अकरम ने ये कहा, जोया अबीर की ओर देखने लगी और बोली, आपको कैसे पता चला हम लोग बेहोश हैं? अबीर ने कहा, मेरे आदमी ने मुझे बताया और जैसे ही मुझे पता चला मैं तभी दौड़कर उस आदमी से तुम्हें ले लिया और अपने साथ यहाँ ले आया। कौन आदमी था? अकरम और जोया एक साथ बोले। अबीर, पता नहीं, शायद वही उसी बिल्डिंग में रहता होगा, वो तुम लोगों को लेकर जा रहा था तो मैंने उसे वहाँ से हटा दिया और खुद यहाँ ले आया था। जोया ने सोचा, शायद उसके दोस्त जो जॉन, डैनियल वगैरह थे उनमें से कोई होगा, लेकिन जोया को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अरहम ठाकुर था, जो झूठी मोहब्बत की कहानी लेकर उसकी ज़िंदगी में आया था।